नमस्कार। आज के मार्गदर्शन कार्यक्रम में मैं अर्चना सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, कहते हैं कि आपकी एक हंसी, आपकी एक मुस्कान किसी के जीवन की दिशा को बदल सकती है। यही नहीं, हंसी के जरिए, एक ठहाके के जरिए हमारे शरीर में कुछ ऐसे द्रव्य पैदा होते हैं जो कि खुशियों के स्रोत खोल देते हैं। हमारे स्टूडियो में भी ऐसे ही कुछ हंसते मुस्कुराते हुए लोग आए हैं जो कि नागपुर लाफ्टर क्लब के सदस्य हैं। इनके जहन में भी कुछ सवाल है जिन्हें लेकर आज ये हमारे स्टूडियो में उपस्थित हुए हैं, और इनके जवाब देने के लिए हमारे साथ हैं बेहद अनुभवी व्यक्तित्व पुष्पा रानी दीदी जी। दीदी जी, हम सभी की ओर से नमस्कार। जैसा कि मैंने पहले भी बताया, पुष्पा रानी दीदी जी हमारे प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के विदर्भ क्षेत्र के सब जोन संचालिका हैं। हमने पहले भी इनसे बहुत सारे सवालों के जवाब जाने हैं। आज देखते हैं कि लाफ्टर क्लब के सदस्य इनसे क्या सवाल पूछना चाहते हैं। तो शुरू करते हैं आज के सवालों का सिलसिला। पहला सवाल पूछेंगे नलिन मजीठिया जी।
मैं नलिन मजीठिया, माजी कंज्यूमर कोर्ट जज, मैं यहाँ पर इस कार्यक्रम में आया हूँ। और सबसे पहले मेरा सवाल यह है कि आज सबसे बड़ा इश्यू भारत में यह है कि स्त्री भ्रूण हत्या हो रही है, और ये स्त्री भ्रूण हत्या अपने आध्यात्मिक मार्ग से कैसी रोकी जा सकती है?
जिस आत्मा का हमारे साथ लेना देना कर्मों का हिसाब होगा, चाहे बच्चा या बच्चे के रूप में, वो हमारे पास आएंगे तो उतना ही प्यार से बच्चे को स्वीकार करो, उतना ही प्यार से बच्चे को। तो पहले अपने ही मन के अंदर जब ये फर्क आता है तब हम चेक करते हैं, तब हम उसका हत्या की ओर कदम बढ़ाते हैं और पाप के भागी बनते हैं। इसलिए सबसे पहले, जैसे कहते हैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, किस नाते से भाई भाई कहते हैं? एक परमात्मा की संतान, आत्मा रूप में सब भाई भाई हैं। देह में आते हैं तब बच्चा और बच्ची बनते हैं। ड्रामा के अंदर जब एक्टिंग करते हैं, पार्ट बजाते हैं, तो क्या सारे बच्चे बजाते या सब नारियां बजाती हैं? ऐसा तो नहीं है। जो जिसका पार्ट है एक्यूरेट है वो पार्ट अपना बजाते हैं। पर ये कर्म क्षेत्र है, इसमें हमारे पिछले जन्मों के कर्मों के हिसाब से वो बच्चा या बच्ची आते हैं। तब आप लोग को मालूम होगा, अगर कोई बच्चा दुख देने वाला भी पैदा हो जाता है तो हम कहते हैं ये बेटा बन करके आया है मेरा हिसाब चुकाने। जब पिछले जन्म में मैंने जिन आत्माओं से लेन देन की है उनका मैं नहीं दे पाया वापस, वो आज बच्चे बनकर के अधिकार से लेते हैं। तो वो चुकाने के लिए बच्चे भी चुका सकते हैं, बच्चा भी चुका सकता है। जब हरी कर्मों का खेल, मैंने कर्म किए हैं, कर्मों के आधार पे हमारे संबंध बने हैं, तो उसमें हम मायूस क्यों हो जाए?
जो हमारे भीतर परमात्मा के लिए जो रिस्पेक्ट है, जो उनके अंदर बिलीव है, वो कम होना ही इस पाप के पीछे कारण है। हम ये भूल गए हैं कि अपने जीवन को चलाने वाले हम नहीं है बल्कि वो परमात्मा है। उसने जो हमें दिया है हमें उसे स्वीकार करना है। जी, अगला सवाल लेते हैं हम, पूछेंगे जतिंदर पाल सिंह जी। जतिंदर जी।
जतिंदर पाल सिंह, बिजनेसमैन हूं। हम एक्सरसाइज, लाफ्टर सब करते हैं, मेडिटेशन भी करते हैं, योगा भी करते हैं, लेकिन मेडिटेशन करने के टाइम कभी कभी हमारा मन भटकता है।
सबसे पहले योग का जो आधार है वो हम समझते पहले अपने आप को इस देह से न्यारा चैतन्य शक्ति आत्मा समझो। जैसे गाड़ी चलाने के लिए ड्राइवर, उसकी सीट फिक्स होती है, वहां बैठ करके ही गाड़ी को कंट्रोल कर सकता है। अगर वो पहले सीट ही चेंज कर देवे तो क्या गाड़ी को कंट्रोल कर सकेगा, चला सकेगा, आगे बढ़ा सकेगा? नहीं। इसलिए इसी तरह से ये शरीर हमारी एक मोटर है, एक कार है, इसको चलाने वाली मैं चैतन्य शक्ति आत्मा जो अति सूक्ष्म है, जिसके लिए कहते भ्रकुटी के बीच में चमकता है अजब सितारा। पहले हमें वो जान करके, पहचान के अपनी स्वस्थिति में रहना है। उसके बाद जब योग शब्द आता है तो दो का जोड़, जहां दो मिलते हैं उसको योग कहते हैं। कदर योगा योग मुलाकात हुई, तो यहां किसके साथ हमें कनेक्शन जोड़ना है? परमात्मा के साथ, पिता के साथ। सबसे पहले हम उनको अपना पिता समझें, केवल परमात्मा नहीं कहो, परमात्मा आपका पिता है। एक सीधी सी बात, अगर राष्ट्रपति का बच्चा, उससे कोई पूछे राष्ट्रपति कौन है, क्या वो नाम बताएगा? आपसे पूछेंगे आप कहेंगे प्रतिभा भाई पाटिल, परंतु उनके बेटे से पूछो कौन है, कहेंगे मेरी मां। तो खुशी में अंतर पड़ गया ना, वो समीपता आ गई, जहां रिलेशन है वह समीपता है। परमात्मा को भी हम पिता के रूप में माने तो वो समीपता आएगी। उसके बाद एक बेटा कभी नहीं पूछता मैं अपने बाप को कैसे याद करूं, उसमें मन को कैसे लगाऊं। स्त्री कभी नहीं पूछती मैं अपने पति को कैसे याद करूं, उसमें कैसे मन को लगाऊं। जब हमारा रिलेशन टूट जाता है तब हमें याद भूलते, तब हमारा मन भटकता है।
मुझे लगता है इन्हें अपना उत्तर मिल गया होगा कि योग सिर्फ एक शारीरिक क्रिया नहीं है, बल्कि मन से परमात्मा को जोड़ने की क्रिया। दीदी जी, मुझे लगता है मैं सही समझी हूँ? तो इसे करने के लिए भी आपको एक अभ्यास की जरूरत है, राजयोग सीखने की जरूरत है, जिसके बारे में दीदी जी ने हमें बताया। चलिए लेते हैं अगला सवाल, जो पूछने वाली है राजवंत कौर जी।
जब भी हम दूसरों से प्रेम करते हैं, कुछ मतलब हस्बैंड है, बच्चे हैं, तो उनसे हम अनकंडीशनल लव क्यों नहीं कर पाते? हम उनसे आगे फ्रेंड्स हैं, रिश्तेदार हैं, आगे से कुछ उम्मीद क्यों रख लेते हैं कि बिना किसी उम्मीद के हम उनको प्रेम कर सकते हैं? तो कैसे कर सकते हैं?
वो सच्चा प्रेम जिसको कहा जाए, जब हम आत्मिक रूप में देखेंगे तो सबके साथ होगा। परमात्मा को प्यार का सागर कहा गया, प्रेम का सागर। तो जब हम उनकी संतान हैं तो हम सबसे प्यार करें। वैसे भी लौकिक में अगर किसी मां बाप को खुश करना हो तो कहते उसके बच्चे से प्यार करो। तो सब आत्माएं भी परमात्मा की संतान है। अगर परमात्मा को प्रसन्न करना है सबके साथ समान। अगर हमारा किसी स्वार्थ के प्रति होगा तो कोई विशेष आत्मा से होगा, विशेष व्यक्ति से होगा, बाकियों से नहीं होगा। अगर कोई स्वार्थ का प्रेम होगा तो किसी से प्रेम, किसी से नफरत भी हो सकती है, क्योंकि दूसरे से हमको कुछ मिलता नहीं। तो उसके अंदर नफरत, प्यार के साथ साथ किसी के साथ मेरे मन में नफरत भी आ जाती है। अगर हम सबको परमात्मा के बच्चे समझें, सब आत्मा रूप में भाई भाई, शरीर लेके संसार में हम पार्ट बजा रहे हैं, जो जिसका पार्ट है वो बजा रहे हैं। ठीक है, किसी के कोई मेरा पति बना है, कोई मां बने है, कोई बाप बना है, कोई बेटा बना है, पर ये सब इस जहान के रिश्ते हैं, परलोक के रिश्ते नहीं है। यहां बने हैं यहां ही रह जाएंगे। कहते हैं मुट्ठी बांध के आए जगत में हाथ पसारे जाएगा, अकेले आए हैं अकेले जाना है। पर जब अपन हमारे अंदर कुछ स्वार्थ का कीड़ा लग जाता है ना, उस समय किसी से प्यार किसी से नफरत आत्मिक भाव हो संभाव हो परमात्मा के बच्चे ये स्मृति हो इसके साथ निस्वार्थ कोई भी प्रकार का स्वार्थ हम ना रखें। हम निस्वार्थ रहे तो भगवान में भूखा रखने वाला नहीं है। स्वार्थ में और ही प्राप्ति की कमी हो सकती है, निस्वार्थ में और इस सब का प्यार भी मिलता है। जब प्यार मिलेगा तो उससे योग भी मिलेगा, हर मुश्किलें आसान हो जाएंगी, क्योंकि स्वार्थ के पीछे का मुश्किलातें भी पैदा होती हैं। अगर हर मुश्किल को खत्म करना हो, सहज रीति से जीवन चलाना हो, तो आत्मिक भाव संभाव निस्वार्थ भाव रखो, आत्मिक प्रेम करो न कि शारीरिक।
मुझे लगता है राजेंद्र जी को अपना उत्तर मिल गया होगा कि अगर अनकंडीशनल लव करना है, बिना शर्त प्रेम करना है, तो सबसे पहले अपने स्वार्थ पर आपको विजय पानी होगी। और चलिए लेते हैं अगला सवाल जो पूछेंगे मुकुंद त्रिवेदी जी।
कहना यह है कि आज की परिस्थिति को कुटुंब परिवार को उसमें किस प्रकार से अपने को आगे बढ़ना है, घटना बहुत सारी होती है, तो उसको कैसे आगे लाया जाए, कैसे मिलाया जाए।
जीवन में आगे बढ़ने के लिए सबसे पहले अपने अंदर श्रेष्ठ गुणों की धारणा चाहिए, श्रेष्ठ व्यवहार चाहिए। जैसे आप ध्यान रखते हो कि हम हंस करके खुशी को प्राप्त करें, वो भी एक माध्यम जरूर है, परंतु अगर हम अपने मन को सदा प्रसन्न रखें, और वो भी एक हर परिस्थिति में प्रसन्न रखें। क्या होता है, परिस्थिति ठीक आई तो हम प्रसन्न हो जाते हैं, थोड़ी परिस्थिति ऐसी आ गई तो हम दुखी हो जाते हैं, फिर वो हमारी खुशी खत्म हो जाती है, उस समय हमारा मुस्कुराना भी बंद हो जाता है। तो हम अपने मन को प्रसन्न रखें, उसके लिए हर परिस्थिति में जीना सीखें। जो हर परिस्थितियों में उतार में चढ़ाव में ऊंचाई में नीचाई में अपनी स्थिति एक समान साक्षी, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, या कभी हमें बीती बात का चिंतन आ जाता है, वहां भी समझो जो हो गया बहुत अच्छा हो रहा है, अच्छा होगा अच्छे से अच्छा। उसके लिए कहते भी हैं बीती ताही विसार दे आगे किस सुधले। अगर कोई गलती है कोई समस्या, बीती को भूल जाओ, आगे के लिए सावधान रहो, भाई ये चीज का नुकसान मेरे हाथ से हो गया, दोबारा ना हो गया, हो गया दोबारा ठीक होना नहीं है, गिलास टूट गया पर दोबारा ना तोड़ू वो तो ध्यान रख सकते हैं। तो एक तो स्वयं पे ध्यान, व्यवहार में हमारी शुद्धि हो, ऐसे ना हो कि कई बार हम अपना चिड़चिड़ापन अपने परिवार के ऊपर खुद निकालने लग जाए। पर मन में अगर चिड़चिड़ापन नहीं आएगा तो हम परिवार पे क्यों निकालेंगे, पर अनुभव ये कहता है आ जाता है। किसी की गलतियों को देख करके खुद क्रोधित हो जाते हैं, और एक आज ये साइकोलॉजी एक बन गई है। अगर मान लीजिए घर के दूसरे सदस्य से कोई चीज टूट गई तो उसको जरूर डांटेंगे, दिखता नहीं है क्या, संभाल के नहीं चल सकते हो क्या, ऐसा नहीं कर सकते हो क्या। वही नुकसान अपने हाथ से होता है, कहते मैंने जानबूझ के थोड़ी किया। अरे बात वही है, नुकसान वही है, दूसरे ने किया तो क्यों किया और मैंने किया तो जानबूझ के थोड़ी किया। क्या इसमें व्यवहार में व्यवहार कुशलता आ सकती है, क्या मधुरता आ सकती है? क्योंकि अगला व्यक्ति भी रियलाइज करता है खुद के लिए हुआ और उस समय हो सकता है वो भी आपके नुकसान को देख के जोश में आ जाए, आपको कहे आप हमको कर दिया आपने क्यों किया, तो वहां दूरियां हो जाती हैं। इसलिए सदा ध्यान रहे, हम सदा हर स्थिति में हर हाल में, कहा जाता है जो प्रभु के उसके ऊपर राजी सदा राजी। जब हम सदा संतुष्ट रहेंगे, राजी रहेंगे, हमारा मन हल्का रहेगा, सबसे व्यवहार हमारा कुशलता पूर्वक चलेगा।
चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, जिसे पूछेंगी मधु मूलचंदानी जी।
जीवन में जो उतार चढ़ाव आते हैं उनको प्यार से कैसे एक्सेप्ट करें?
उतार चढ़ाव को हम रोक नहीं सकते, क्यों? ये सृष्टि एक कर्म क्षेत्र है। वास्तव में उतार चढ़ाव कहीं से आता नहीं है, हमारे ही कर्मों का फल है। जैसे समझो हम चल रहे हैं, पीछे में जो परछाई आ रही है वो प्रतिबिंब मेरा ही है और किसी का नहीं। तो ऐसे कर्म जो हमने पिछले जन्म में किए आज वो हमारे सामने फल के रूप में आते हैं। जब कर्मों का फल को समझेंगे कि मैंने उनसे कर्जा लिया मुझे देना, खुशी से दो। या कहते ईश्वर पे छोड़ो, ईश्वर भला करेगा, कहते हुए ना तेरा भाणा मीठा लागे। हम मुख से तो कह देते पर क्या भी अपने मन को हमारे मीठा लग रहा है, या वो कड़वा लगता है इसलिए दिल दुखी होता है? तो इसलिए हम उस राज को जान करके अगर प्रभु पर छोड़ना है तेरा भाणा मीठे लगे, आज तूने क्या, आज अगर कुछ ऐसी बात है कल सुधारेगा भी तू। अपने कर्मों का फल वो मुझे चुकतू करना है। पर एक बात ये है, कर्म कर्म कूटना नहीं है। हाय मेरी किस्मत, हाय मेरा भाग्य, वो कह के भी कई बार रोते हैं, चिंतन में चले जाते हैं, अंदर दुखी होते रहते हैं। नहीं, कहा जाता है जो सामने बात आई उसे सीख लो, तो आगे के लिए मेरा भविष्य अच्छा बने उसके लिए श्रेष्ठ कर्म करो, और जो बात आई है मुस्कुराते मुस्कुराते पार करो। कभी शारीरिक व्याधि भी आ सकती है, वहां भी हाय हाय नहीं, हाय मैं क्या करूं, मेरे सिर बड़ा दर्द हो रहा है, हाय मैं क्या करूं। हाय हाय करने से बीमारी बढ़ेगी, दुखी होने से हम कोई भी बात को हैंडल नहीं कर सकेंगे, कि हमारा समय दुखी होने में व्यतीत हो रहा है। समय वही है, या तो दुखी होकर व्यतीत करो या खुश रह के व्यतीत करो।
शायद गीता में भी यही बात कही गई है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। फल तो हमें मिल ही जाएगा जो हमने किया है, जो हम कर रहे हैं, तो उसकी चिंता करने की जगह मुझे लगता है दीदी जी आप इनको यही समझाना चाह रही थी कि अपने कर्मों की ओर ध्यान दें, आज भी कल भी हमेशा। अगला सवाल लेते हैं, जिसे देवेंद्र मते जी पूछना चाहते हैं। देवेंद्र जी अपना सवाल पूछे।
सभी समस्याओं का मूल मनुष्य की संग्रह वृत्ति है, तो इस संग्रह वृत्ति को यदि खत्म कर दिया जाए तो इस संग्रह वृत्ति को खत्म करने के उपाय क्या है?
संग्रह वृत्ति अर्थात स्वार्थ वृत्ति। जो स्वार्थ है जहां लोभ है, कहा भी जाता है लोभ से कभी भी लाभ नहीं मिल सकता। अगर हमें ये पक्का है तो कभी हम संग्रह वृत्ति नहीं रखेंगे। क्यों? हमको अपने भाग्य पर भी विश्वास है, जो मैंने कर्म किए उसका फल मेरा अगर भाग्य में है मुझे मिलना ही है, तो मैं दूसरों की तरफ से छीना झपटी करने की क्यों बात करूं? संग्रह वृत्ति वाला वो बुद्धि में रखता है दूसरे का चाहे 5 रुपए 5,000 का नुकसान हो जाए, अगर मुझे 5 रुपए का भी फायदा है तो मैं जरूर करूं। तो अगर हम ये बुद्धि में रख करके उसके पीछे कितनी आप समझो बातें आ जाती हैं, ऊंचाई नीचाई आ जाती है। उससे जिस व्यक्ति को अगर हमने कुछ नुकसान पहुंचाया हमारे स्वार्थ के कारण, दूसरे का नुकसान हुआ, तो क्या उसकी बददुआएं मुझे नहीं लगेंगी? वो वाइब्रेशन काम नहीं करेंगे? इसलिए इसको हमें बिल्कुल समाप्त करना चाहिए। ये भी एक निश्चय रखो कि भूखे हम रह नहीं सकते और साथ हम लेके नहीं जा सकते। जैसे सिकंदर बादशाह ने ये जब उसका समय आया उसने कह दिया कि मेरे हाथ कफन से बाहर रखना, ताकि सबको यह पता लगे कि मैं खाली हाथ जा रहा हूं। उसने बहुत संग्रह किया था। तो जब साथ ले ही नहीं जाना है तो आज मैं अपनी इच्छाओं को क्यों बढ़ावा दूं, अच्छा क्यों नहीं बना? इच्छाएं अच्छा बनने नहीं देंगी, आवश्यकताएं भगवान जरूर पूरी करेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि हाथ पे हाथ रख जाओ भगवान पूरी करेगा। प्रयास करिए पर उसमें ईमानदारी को रखिए, ईमानदारी करिए, मेहनत करिए, उससे आपको जो मिलेगा वो आपका भाग्य है। बाकी इस दुनिया का खाली हाथ आए और खाली हाथ जाना है, यादा लोभ लालच स्वार्थ, इसका नाम ये विकार बुराई। क्या विकार हमें सुख देंगे? क्या कभी बुराई का रिजल्ट सुख मिला? कभी नहीं मिलेगा। इसलिए अच्छे करूं, ये भी इंसान को कहा जाता है कि कुछ दान भी करते जाओ, पुण्य भी करते जाओ।
और दीदी जी ने उसका उत्तर दिया कि संग्रह करना ही है तो अपने अच्छे कर्मों का संग्रह कीजिए, क्योंकि धन दौलत तो यही छूट जाती है लेकिन हमारे जो कर्म हैं वो हमारे साथ, उनका जो रिजल्ट है वो हमें अगले जन्म में भी मिलता है। मैं आमंत्रित करती हूँ किशोर ठुठेजा जी को कि वे अपना सवाल पूछे।
अपना संस्था चला रही है, अब इसमें आपके पास कई किस्म के प्रॉब्लम आते हैं तो भी आप कैसे संभालती है? उस पर आपका प्रकाश ही अपना बैलेंस को न खोते हुए, सब लोग उसमें कई अच्छे लोग हैं कई बुरे लोग हैं, उनको कैसे सेटिस्फाई करते हुए अपनी संतुष्टि कैसे बढ़ाते हैं, वो प्रश्न है मेरा।
संतुष्टता हमारा एक श्रृंगार है। आप इंडस्ट्रीज तो चला रहे हो, औरों को कमाई का साधन भी दे रहे हो, परंतु खुद में भी संतुष्टता हो दूसरे में भी हो। सबसे पहले आप अपने दिमाग में आइस फैक्ट्री चलाना, दिमाग ठंडा, जो वाणी है उसमें मिठास अर्थात शुगर फैक्ट्री, दिल में सेटिस्फेक्शन फैक्ट्री। कभी आप अपने परिवार से बैठिए, कभी आप वर्कर के साथ बैठिए, उनकी कठिनाइयों को पूछिए और उनको हल दीजिए। तो जब इस प्रकार से हम उनकी भी कठिनाइयां सुनते हुए हल देते हैं तो वह जरूर सेटिस्फाइड हो जाते हैं। जब हम उनके विचारों को नहीं जानते हैं कि और करो, उनके हैंड को यूज करते हैं, जिसके लिए कहा जाए हाँ जितने हैंड यूज करने हो ना उसके साथ उनका हेड भी यूज करो, पर उसका हार्ट भी यूज करो। हार्ट प्रेम देगा, हैंड सहयोग देगा, हेड उनका दिमाग चलेगा तो कार्य में तीव्रता आएगी। और हर एक को लगना चाहिए कि ये मेरा अपना है। जब आप उनको उतना प्यार देंगे, जब आप उनके दिल की बात सुनेंगे, उनको भारी नहीं उनको हल्का रखेंगे, तो ऑटोमेटिक उनमें अपनापन आएगा और सेटिस्फाइड हो जाएंगे।
सवालों का सिलसिला चलता रहेगा, लेकिन एक अंतिम सवाल ले लेते हैं हम। अनुराधा देशराज जी, आप जो पूछना चाहती हैं, जो सवाल है वो पूछ सकती हैं।
दीदी जी, मेरा प्रश्न है कि जिन लोगों को हम बहुत प्यार करते हैं वही हमें क्यों तकलीफ देते हैं, कृपया मार्गदर्शन कीजिए।
इसके लिए पहले हमारे में परख शक्ति चाहिए। जिस व्यक्ति के ऊपर मैंने विश्वास रखा वो उस क्वालिटी का है या नहीं, अपनी परख शक्ति को बढ़ाइए। उसके लिए आप थोड़ा जो मेडिटेशन है, मन का योग, वो सीखिए, तो ऑटोमेटिक आपकी परख शक्ति बढ़ जाएगी, फिर आपको धोखा नहीं मिलेगा।
सवालों का सिलसिला आगे बढ़ता रहेगा। अगले कार्यक्रम में हम कुछ नए सवालों के साथ फिर उपस्थित होंगे। मैं दीदी जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूं और आप सभी लोगों का धन्यवाद कि आप इस कार्यक्रम में आए। समय समाप्त होने चला है, आज्ञा दीजिए। नमस्कार।